ओम शांति। एक बार मेरे साथ मिलकर हम सभी उस रीति से ओम की ध्वनि करेंगे जैसा हम सबने सुना है कि यज्ञ के आदि में सब ब्राह्मण वत्स और ब्रह्मा बाबा सभी मिलकर के किया करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे, फिर दूसरी गहरी श्वास लेकर उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। वास्तव में ये महामंत्र ही ओम शांति का महामंत्र ही आज के टॉपिक का उत्तर है, महसूसता की शक्ति द्वारा परिवर्तन। और महसूसता की शक्ति के लिए ओम शांति के भाव में स्थित होना बहुत आवश्यक है। वैसे तो पहले दिन का हमारा कोर्स ही यही है, ओम शांति अर्थात मैं आत्मा हूँ और शांत स्वरूप हूँ। लेकिन ये पहले दिन के साथ साथ हमारा लास्ट कोर्स भी है, जब हम इस भाव में स्थित हो जाते हैं। पहले दिन तो केवल उसकी नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है कि मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। लेकिन ज्ञान मार्ग पर चलते चलते 5, 10, 20, 50, 80, 100 साल हो जाते हैं तो सारा अभ्यास करते 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 अंत में ऐसी स्थिति आ जाती है कि तब हम ओम शांति के भाव में परमानेंट स्थित हो जाते हैं और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और केवल शांति नहीं, क्योंकि पवित्रता जो हमारा मुख्य धर्म है और कहा भी जाता है, वेयर देयर इज प्योरिटी देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति है ही है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो इसीलिए फिर उस भाव में हम स्थित हो जाते हैं और ये ही अंत में हमें कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कराती है। तो आज की मुरली भी बाबा की अव्यक्त मुरली, रिवाइज्ड कोर्स की मुरली आज की, वो महसूसता की शक्ति के ऊपर ही थी कि किस प्रकार से वर्तमान समय इस शक्ति की आवश्यकता है। समय के अनुसार शक्तियां और सभी चीजें बदलती रहती हैं। कहते हैं समय परिवर्तनशील है, समय आगे बढ़ता है और समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये भी कहा जाता है। तो इसीलिए वर्तमान समय जब हम अंत समय के बहुत निकट पहुंच गए हैं तो आज आवश्यकता महसूसता की शक्ति की सबसे ज्यादा है। और जब ज्ञान मार्ग में कोई शुरू में आता है तब तो हम दूसरी शक्तियां बताते हैं, अष्ट शक्तियां जो आप सबको मालूम ही है, सहन शक्ति, निर्णय करने की शक्ति है, सामना करने आदि आदि आठ शक्तियां। लेकिन जब ज्ञान मार्ग में चलते हुए हमें कुछ समय बीत जाता है तो उसके साथ साथ हमें महसूस होने लगता है कि बहुत धारणाएं तो हमने कर ली हैं, स्थूल धारणाएं, खान पान स्वच्छ हो गया, रहन सहन, पुराने संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, और पहले देह समझते थे अब हम लोग आत्मा समझते हैं आदि आदि। मोटी रीति से तो हम लोगों ने बहुत परिवर्तन कर लिया, लेकिन मन जाते जाते फिर धीरे धीरे बहुत कम स्पीड इसकी हो जाती है, और बाबा जो हमें सूक्ष्म परिवर्तन करके हमें अंतिम कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाना चाहता है, और जो बाबा कई बार बोलता है, बाबा की चाहना है कि मेरे सब बच्चे संपन्न और संपूर्ण बन जाए, बाबा एक एक बच्चे को चाहता है पास विद ऑनर हो जाए, बाबा चाहता है एक एक बच्चा साक्षात्कार मूरत बन जाए। तो जितनी बाबा की चाहना है उन चाहनाओं को पूरा करने के लिए हमें कुछ सूक्ष्म शक्तियों की आवश्यकता है, जो आज और हम डिस्कस करेंगे, और जो हमने साकार में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अंदर देखा। क्योंकि ज्ञान मार्ग में आने का सौभाग्य तो हमें 1962 में मिल गया था, और 62 से निरंतर ज्ञान में रहे, लेकिन उससे भी बड़ा सौभाग्य हमें मिला जब अंतिम दो दिनों में 17 और 18 जनवरी 1969 को हम मधुबन में ही थे, और बाबा की पूर्ण कर्मातीत अवस्था को इन आंखों से देखने का मौका मिला। वो भी हम लोग कुछ थोड़ा सा जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आज का विषय है महसूसता की शक्ति, तो अभी हम जिस लेवल पर हैं, हम सब अपने को जानते हैं कि हमने ज्ञान मार्ग में क्या क्या प्राप्त किया, कहाँ तक आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि अभी तो मंजिल जो है, जो बाबा चाहता है, उसमें कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस है। अभी उसे प्राप्त करने के लिए हमारा साधारण पुरुषार्थ नहीं चलेगा, अभी चाहिए कुछ विशेष तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता। तो इसीलिए उसमें पहली ये शक्ति है महसूसता की, जो आज बाबा ने भी काफी क्लियर बताया। और ये महसूसता होनी चाहिए अंदर की महसूसता। एक तो होती है कन्वेंशनल स्वाभाविक रीति से महसूसता, मानो जा रहे हैं, किसी को थोड़ा हमारी वजह से दुख हो गया, टक्कर लग गई, तो सॉरी या माफ करना या ऐसे जैसे महसूस करके बोल देते हैं। और ये है बाहर की महसूसता। बाबा कहता है कि अभी हमें अपने अंदर झांक करके देख करके और हमारे अंदर दिल की महसूसता होनी चाहिए कि हाँ, इतने साल हो गए मुझे ज्ञान मार्ग में, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, जितना भी जिसको हुआ हो, लेकिन ये तो पुरुषार्थ ठीक है, बदलाव आया, लेकिन अभी इस चीज में कमी है, इतने साल बाद भी अभी मेरा ये संस्कार बदला नहीं है। हर एक अपने को जानता है, दूसरे को कहने की जरूरत नहीं। तो ये दिल की महसूसता होनी चाहिए कि हाँ, एक तो ये बदलाव लाना मेरे अंदर आवश्यक है। और एक तो होती है चतुराई की महसूसता, जो बाबा कहते हैं भारी महसूसता। और जब चतुराई की महसूसता होती है तो उसमें क्या करते हैं कि दिल की जब महसूसता होती है, और सच्चे दिल से जब बाबा को कहते हैं, बाबा बस मेरी ये कमी को दूर करो, उसके लिए बाबा बस मुझ में और शक्ति दो, तो क्या होता है, दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होती है। बाबा का हाथ हमारे सिर पर जैसे सदैव हो जाता है, हमारा कंबाइंड फॉर्म बाबा के साथ हो जाता है, और फिर हम उस संस्कार को जीतने में बहुत सक्षम हो जाते हैं, थोड़े समय में ही वो पुराना संस्कार जीत लेते हैं। लेकिन अगर एक चतुराई की महसूसता होती है, दिखावे की महसूसता होती है, तो उसमें क्या होता है, हम अपने ही विवेक का खून कर देते हैं। यानी हमारी अंतरात्मा तो कहती है चलो ये इवेंट गुजरा, लेकिन चूंकि दिल से हम परिवर्तन नहीं हो पाते, इसलिए वो संस्कार उतना ही रह जाता है या और बढ़ता चला जाता है, उस संस्कार को जीत नहीं पाते। कॉन्शियस हमारी अंदर ही अंदर बाइट करती रहती है कि ये जो है, भले मैंने बड़ों के सामने सॉरी कह दिया और अच्छा अब मैं इस संस्कार को बदलूंगा, लेकिन अंदर की अगर महसूसता नहीं तो ये संस्कार बनने का बना रहता है, और फिर ये महसूसता अंदर की न होने के कारण उसका रिजल्ट क्या होता है, हम में परिवर्तन नहीं हो पाता है। जो परिवर्तन हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, और जब परिवर्तन नहीं होता तो खुशी भी नहीं होती। देखो इतने साल हो गए और अभी तक मेरा ये संस्कार नहीं गया, ये इतने वर्ष हो गए और जो मैं चाहता हूँ, जो बाबा चाहता है, अंदर से हम चाहते तो हैं, लेकिन उस बात को सच्चे दिल से रियलाइज न करके उसके अनुरूप पुरुषार्थ नहीं हो पाता, इसलिए फिर अंदर ही अंदर हमारी कॉन्शियस बाइट करती है, हमारी अंतरात्मा हमें धिक्कारती है उस बात के ऊपर, ऐसा होता है ना। तो इसीलिए अभी आवश्यकता है, एक तो अंदर का जो है पुरुषार्थ हमारा ऐसा हो, महसूसता हो, और इसके लिए तो बाबा ने आज की जो मुरली चलाई उसमें इस बात के ऊपर काफी वर्णन किया है, इसलिए उस पे तो हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें परिवर्तन कैसे करना है उस बात पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। तो इसीलिए परिवर्तन शक्ति जो है, अगर सच्ची महसूसता होगी तो हमें उसी क्षण से ही परिवर्तन का आभास होने लगेगा कि हाँ मेरे अंदर बदलाव आ रहा है, और बदलाव जब परिवर्तन आता है तो परिवर्तन में हमें महसूस होता है, एक तो सफलता महसूस होती है, ये सफलता का साधन है, जो भी हमारा आगे पुरुषार्थ होता है वो सफलता की अनुभूति होती है। दूसरा, हमें जैसे बाबा की आशीर्वाद तो प्राप्त होती है, और उस सफलता को पाने के लिए अंदर शक्ति का आभास होता है, समय पर बाबा जो है वो टच करता है और हम उस विकार से बच जाते हैं। मानो हमारे में क्रोध का संस्कार है, अगर क्रोध परिस्थिति वश मानो कहीं आ गया, और उसके बाद चाहे हम जितना भी सॉरी कर लें, जितना भी माफी मांग लें, या उसके बाद हम पश्चाताप भी कर लें, लेकिन जो विकर्म बनना था वो तो बन गया, वो तो हो गया, उससे हमारी अंतरात्मा भी हमें धिक्कारेगी अंदर से। तो अगर हमने सच्चे दिल की महसूसता कर ली तो फायदा सबसे बड़ा क्या होगा कि जब भी परिस्थिति क्रोध की आएगी तो उससे कुछ क्षण पहले ही हमें एकदम आभास हो जाएगा और हम उस परिस्थिति को बदल लेंगे। जो आज भी बाबा ने कहा ना, परिस्थितियां आएंगी लेकिन हम स्वस्थिति से उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो क्रोध आने से पहले ही अगर हम जागृत हो गए और क्रोध को नहीं आने दिया, यही तो हमारा लक्ष्य है, यही तो हमारी विजय है। तो इसीलिए ये तभी होगा जब बाबा ने जैसा कहा है, बुद्धि जो है जितनी क्लीन और क्लियर होगी। जब क्लीन बुद्धि होती है, क्लियर होती है, तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। क्लीन है, मानो ये चश्मा है, क्लीन नहीं है, धूल पड़ी हुई है, तो भी साफ नहीं दिखाई देगा। लेकिन चश्मा अगर साफ भी है, लेकिन अगर नंबर हमारा कुछ ऊंचा नीचा है, गड़बड़ है, तो भी साफ नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए क्लीन और क्लियर, ये ऐसी स्थिति है बुद्धि, ये महसूसता की शक्ति। जितनी जितनी हमने महसूसता होगी, तो इसका मतलब हम सच्चाई सफाई से बाबा को अपने दिल की बात कह रहे हैं, और बाबा उसमें मदद करता जाएगा। देखो, उस पर भी हम आएंगे आगे। तो इसीलिए एक तो क्लीन और क्लियर बुद्धि भी चाहिए, और साथ ही साथ और क्या, टचिंग पावर और कैचिंग पावर। ये जो दो पावर हैं, शक्तियां हैं, ये भी हमारी जितनी स्पष्ट होती जाएंगी, तो उससे क्या होगा, बाबा तो हमें टचिंग कराएगा। देखो बच्चे, ये परिस्थिति अभी क्रोध की परिस्थिति होगी, और तुम स्थान बदल लो, या तुम ये कर लो, जिससे उससे हम डिटैच हो जाएंगे परिस्थिति से, तो वो परिस्थिति हमें वार नहीं करेगी, हराएगी नहीं। परिस्थितियां तो ब्रह्मा बाबा के सामने भी आती थी, हमने देखा बाबा के सामने बहुत है, कई बार बाबा को खांसी आती थी, मुरली चलाते चलाते भी, तो ऐसा लगता था जैसे बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है, और बस आंख में भी पानी आ जाता था, गीला जैसे आंख हो जाती। इतनी आयु थी 90 ईयर्स से ज्यादा, और सर्दी का मौसम माउंट आबू में, तो ये तो परिस्थिति आई, खांसी रूपी परिस्थिति। लेकिन बाबा स्वस्थिति से, बाबा की संदली के पास ही श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट का चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र रहता था, और बाबा कहता था, अरे बच्चे देखो, अभी तो ये पुराने तत्वों का बना हुआ शरीर है, खांसी है, और शरीर के हिसाब किताब हैं, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा मिशनु कृष्ण बनेगा, ऐसा नए तत्व होंगे, नई दुनिया होगी, कोई भी अशुद्धि नहीं होगी, और बस बच्चों को भी खुशी में एकदम ये मारना, खग्गियां मारनी चाहिए। और बाबा खुद भी ना, उस वक्त एक सेकंड पहले तो इतनी खांसी थी, आंख में पानी था, और बाबा बस, बाबा कल जाके ऐसा बनेगा, और इतना नई दुनिया होगी, हम सब उस दुनिया में राज करेंगे, बच्चे तुम लोगों को भी ऐसा होना चाहिए। बाबा के चेहरे पर एकदम मुस्कान, खुशी और वो आ जाती थी, और खांसी कहाँ गई पता ही नहीं चलता था, बस फिर बाबा बढ़िया मुरली चलाने लगते थे। तो स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आएगी, यहाँ से भी जाएंगे, नीचे भी उतरेंगे, तो ही और भी ट्रेन में बैठेंगे या प्लेन में, जैसे भी परिस्थितियां तो बहुत आएंगी, लेकिन परिस्थितियां आए, लेकिन हमारी स्वस्थिति एकदम मजबूत हो जाए। और वो तभी होगा जब हमारी बुद्धि भी क्लीन होगी। बाबा तो समय पर टच कराता है। बाबा ने एक मुरली में बोला था, मेरे पास हर बच्चे का टीवी है, और टीवी 24 घंटा तो ऑन नहीं रहेगा, लेकिन जब कोई बच्चे की कोई परिस्थिति आती है, वो कमजोर पड़ता है, कोई ऐसी स्थिति आई, तो उसका टीवी एकदम ऑन हो जाता है, और बाबा देखता है कि अच्छा, इस बच्चे के सामने अभी ये परिस्थिति आई है, फिर बाबा उस बच्चे को सकाश देता है, शक्ति देता है, और कि इस परिस्थिति को ये बच्चा पार कर ले। इतना काम तो बाबा करता है, लेकिन अगर उसकी बच्चे की रिसीविंग पावर ही, उसका अपना टीवी सेट ही बुद्धि का ठीक नहीं होगा, तो बाबा तो शक्ति भेज रहा है, लेकिन वो अगर रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो तब वो परिस्थिति से हार खा लेता है, लेकिन अगर ये क्लीन है उसका, उसको रिसीव कर लेता है, तुरंत ही उसको टच हो जाता है कि बाबा मुझे अब चाहता है मैं ये करूं, और वो उस परिस्थिति से अपने को डिटैच कर लेता है। तो बाबा के पास तो एक एक बच्चे का, आज भी बाबा ने कहा ना जैसे मुरली में, बाबा तो इतना भोला नाथ है, बच्चे समझते हैं चलो हमने चला लिया, लेकिन बाबा जानते हुए भी फिर भी बच्चों को हाँ 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 शाबाश बहुत अच्छा, क्योंकि बाबा उस जगह ही खड़ा नहीं रहने देना चाहता और आगे बढ़ाना चाहता। तो इसीलिए इसके जो ये महसूसता हो जाती है, तो जितना जितना हमारे में परिवर्तन आता है तो परिवर्तन के आधार पर हमारी खुशी बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात जो बाबा आजकल बोलता है संतुष्टता आती है, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन संतुष्टता का आधार है। तो अगर हमारी संतुष्टता में भी खुशी में वृद्धि होती जा रही है तो समझना चाहिए कि मेरे अंदर अगर कहीं कमी है, और इसका मतलब मैं दिल से रियलाइज कर रहा हूँ महसूसता, और इसलिए मेरे अंदर परिवर्तन होता जा रहा है, और जितना जितना ये परिवर्तन होगा, और उसका आधार भी बाबा ने आज भी मुरली में बता दिया कि जब हम निमित्त बन करके कोई कार्य करते हैं, निर्माण भाव से करते हैं, बड़े दिल से निर्माण भाव और निस्वार्थ सेवा अगर हमारी होती है तो क्या होता है, परिवर्तन होता जाता है हमारा सेंस ऑफ। इसके लिए हम दूसरे को न देखें, हम यही देखें बस मैं अर्जुन, मुझे करना है, दूसरा कोई करे न करे लेकिन मुझे करना है। और जब ये स्थिति आ जाती है तो क्या होता है, अंदर से हमारी, जैसे बाबा ने परिवर्तन का तो हमें सबको अनुभव है, जब से ज्ञान में आया तब से परिवर्तन तो हुआ ही है, अशुद्ध खान पान सभी रहन सहन सब बदल गया, और इस रीति से परिवर्तन तो आया ही है, लेकिन इस परिवर्तन की श्रृंखला को कायम रखते चले इसके लिए बाबा ने छह बातें जो मुख्य रीति से सूक्ष्म बताई हैं। तो सबसे पहला है स्मृति का परिवर्तन, स्मृति हमारी बदल गई, सारी लौकिक बातें अलौकिक में परिवर्तित हो गई, साथ ही साथ सारा स्मृति के साथ साथ फिर और सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म चीज है वृत्ति, और वृत्ति भी जब हमारी परिवर्तित हो जाती है, हमारा सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड तो हमारा चेंज हो गया लेकिन सब कॉन्शियस माइंड भी इतना चेंज हो जाए, जो बाबा परिवर्तन की चरम सीमा क्या बताता है, अभी थोड़े दिन पहले ही बाबा ने मुरली में कहा था, बाबा ये वृत्ति भी हमारी परिवर्तित होके अलौकिक हो गई, उसका प्रमाण क्या है, हमारे स्वपन, वो उसका प्रमाण है। संकल्प तक तो हम फिर भी समझते हैं हमारे कुछ कंट्रोल में है, खराब संकल्प आया या व्यर्थ आया, हम एकदम से उधर से बुद्धि को हटा के संकल्पों की तरफ, शुद्ध संकल्पों की तरफ ले आते हैं, लेकिन स्वपन तक की पवित्रता भी बाबा, और पवित्रता का मतलब केवल ब्रह्मचर्य ही नहीं है बल्कि कोई भी प्रकार के घृणा ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना, ये सब अपवित्रता है। तो केवल विकार की, काम विकार की नहीं, बल्कि ये सारी जहां भी निगेटिविटी कुछ है, नकारात्मकता जीवन में कुछ है, वो है हमारी अपवित्रता। इसीलिए एक तो हमें ये भी देखते चलना है परिवर्तन का आधार, और इन चीजों से हमें पता चलेगा कितने हमारे विचार भी शुद्ध हो रहे हैं, और जब मन के संकल्प भी शुद्ध होते चले जाते हैं, विचार शुद्ध होते चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली परिवर्तन आता जाता है। तो पहला एक स्मृति का के साथ साथ वृत्ति का, सूक्ष्म वृत्ति का प्रति जो चेंज है, परिवर्तन है, वो होता चला जाता है, और वृत्ति के साथ साथ दृष्टि का परिवर्तन। ये बाबा सबसे ज्यादा महत्व, बाकी सारे अंग हैं शरीर के लेकिन दृष्टि को विशेष देता है। और दृष्टि का परिवर्तन, इसीलिए अंतिम स्टेज भी जो कहा गया है ना, वो कहा गया है साक्षी दृष्टा, दृष्टि से कनेक्टेड। अगर हम भी अंतिम कर्मातीत अवस्था साक्षी दृष्टा स्थिति को पाना चाहते हैं तो इनमें मुख्य चार पांच बातें हैं। ये कैसे हम दृष्टि को, बाबा कहता है एकदम सिविल बन जाए, क्रिमिनल आई रहे ही नहीं। तो इसीलिए एक तो हमें ये ख्याल रहना चाहिए, ये आंख जो है ना, ये दृष्टि नहीं है, ये क्या है, आंख जो है मतलब इंस्ट्रूमेंट है, आत्मा जो है वो दृष्टा है, देखने वाली। हम कहते हैं मेरी आंख देख रही है, आंख नहीं देख रही, आंख तो खिड़की है, खिड़की खुद थोड़ी देखती है, खिड़की के पीछे जो खड़ा होता है वो देख। ऐसे ही आंख के बैक में भी जो आत्मा है, आत्मा देख रही है, तो आत्मा दृष्टा है। इसीलिए कहा गया है साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टि नहीं, साक्षी दृष्टा। एक है दृष्टा, ये दूसरी है दृष्टि, तीसरी चीज है दृश्य, जो सामने हम संसार में देख रहे हैं अपनी आंखों से। तो ये भाव रहना चाहिए, मैं दृष्टा आत्मा इन दृष्टि से, इस खिड़की से इस दृश्य को देख रहे हैं। जैसे दृश्य आता है चला जाता है, ट्रेन में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, कहीं भी एक दृश्य आता है, वहीं खड़े नहीं हो जाते, चलती जाती है गाड़ी और वो दृश्य पास होते चले जाते। और ये कब, क्योंकि हम साक्षी दृष्टा, हमारे माइंड में लक्ष्य है कि हमें वहां तक पहुंचना है। ऐसे ही बाबा चाहता है आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा में भी ना, कहीं पर भी हम खड़े ना हो जाएं और चलते ही रहे, चाहे जो भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति में फंसे नहीं। तो दृष्टा, दृष्टि, दृश्य, और ये सब का आधार भी है हमारा दृष्टिकोण, एटीट्यूड। जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा हम उस चीज को वैसा ही देखेंगे। दृष्टिकोण ही हमारा अगर बहुत पॉजिटिव होगा तो खराब चीज भी होगी तो हम उस पर, हमारे पर नेगेटिव असर नहीं होगा। भाई हमारा दृष्टिकोण ही पॉजिटिव है, और हमें बाबा की वो याद बात रहेगी कि बच्चे इस संगम पर तुम्हारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। चाहे दृश्य में बहुत दिखे, अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, कोई कुछ कहे, लेकिन उस दृश्य में भी आगे चल के बहुत कल्याण है। ये बुद्धि में जब बैठ जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर वो हमें दृष्टिकोण पॉजिटिव जैसा होगा। उसके आधार पर ही पांचवी बात है, हमारे दृष्टांत लिखे जाएंगे, हम इतिहास लिखे जाएंगे। हम इतिहास पढ़ने वाले नहीं हैं, हम सब आत्माएं इतिहास बनाने वाली हैं, हम इतिहास लिख रही हैं। साधारण बात नहीं है, इतिहास लिखने वाले बनाने वाले बहुत बहुत कम होते हैं, पढ़ने वाले तो दुनिया होती है। इसीलिए हम इतिहास बना रहे हैं, और जितना हमारा ये दृष्टिकोण होगा वैसा ही हमारे दृष्टांत भक्ति मार्ग में लिखे जाएंगे। जो इतने अनेक अनेक भक्तों के दृष्टांत लिखे गए हैं, भगवान आके उनका कार्य कर गया, उनकी अनुपस्थिति में भगवान ने उसकी इस तरीके से रक्षा की आदि आदि, तो वो दृष्टांत भी तब लिखे जाते हैं जब हम इस स्टेज में रहेंगे, जो बाबा ने आंख के लिए कहा है कि भाई कंप्लीट सिविल आई हो, ये कर्मातीत आत्मा के लक्षण है। तो उसके अंदर दृष्टा, दृष्टि और ये दृश्य, दृष्टांत और दृष्टिकोण, ये बात अगर हमारे रहेगी तो सिविल आई हमारी एकदम समय पर बन जाएगी। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, और दृष्टि के बाद फिर कृति, क्योंकि जैसा दृष्टिकोण होता है, एटीट्यूड होता है, फिर वैसा ही हम कर्म करते हैं। तो वैसे ही कृति कर्म हमारे होने लगेंगे, स्वाभाविक रीति से कर्मातीत अवस्था की तरफ कदम बढ़ते जाएंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा के भी बढ़ते चले गए। हमने देखा पहले बाबा से जब हम लोग मिलते थे 1962, 63, 64 वगैरह में, तो बाबा बहुत समय हम लोगों को देते थे, आओ बच्चे क्या कर रहे हो, क्या पुरुषार्थ है, अब क्या प्लान है, आदि आदि बहुत सेवा कैसी चल रही है। लेकिन धीरे 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 बाबा समेटते जा रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे कर्मातीत अवस्था की तरफ आत्मा जाती है, और भक्ति मार्ग में हम सब ने सुना है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा को वो बातें खास याद आती हैं उस समय जब शरीर छोड़ती है, जहाँ उसका कहीं लगाव है, झुकाव है, जिससे बहुत अति प्रेम है या कोई घृणा है, ऐसा स्थिति में आत्मा आती है वो। और अगर वहां बुद्धि अटक गई उसकी तो क्या होगा, कर्मातीत तो होगी नहीं, अंतमति सुगति तो होगी नहीं। अंत में अगर कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कोई भी बात याद आ गई तो वहां फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, और फिर उसकी अतृप्त इच्छाएं वहां पर पूरी होंगी। तो इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारा ये जो है, हम चाहते तो है ना अंतमते सोगति हो, तो परिवर्तन का आधार ही ये है कि समय पर हमें राइट चीज टच हो जाए। अभी जीवन में कोई कमजोरी आती है और समय पर टच हो गई, उस कमजोरी से हम बच जाएंगे तुरंत। ये बाबा का वायदा है हम बच्चों से, इसीलिए बाबा कहता है कि बस बच्चे कभी भी हो, कोई ऐसी परिस्थिति आए तो बाबा ने एक महामंत्र कौन सा दिया हुआ है, हाँ, बाबा का आह्वान करो, बाबा मेरे, बाबा मेरे साथी आओ, बाबा मुझे इस परिस्थिति से निकालो, बाबा आओ। बाबा का आवाहन करते हैं, बाबा बंधा हुआ है उस परिस्थिति के लिए। लेकिन होता क्या है, कोई परिस्थिति आई तो हमें पहले अपने कोई संबंधी या देहधारी या कोई ऐसे लोग याद आते हैं जो मुझे उस परिस्थिति से निकाल सकते हैं जो मैं सोचता हूँ। द्रौपदी का भी इसी में उदाहरण है ना, द्रौपदी जब ऐसी परिस्थिति में थी और कौरव चीरहरण कर रहे थे, तो बाद में जब भगवान को याद किया, कृष्ण को, तो कहते हैं तब वो आए, तो द्रौपदी ने कहा, हे भगवान, आपने आने में इतनी देरी क्यों करी। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तो देरी नहीं करी, मैं तो साक्षी होकर देख रहा था, तुमने पहले पतियों को, पांच पतियों को याद किया, वो तुम्हें इस परिस्थिति से छुड़ाएंगे, फिर गुरु द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, आदि आदि उनको याद किया। जब कोई भी सब सिर नीचा किए बैठे रहे, कोई तुम्हें उस परिस्थिति से नहीं निकाल सका, और अंत में जब तुमने मुझे याद किया तो मैं तो ऐसे आया, और तुम्हें देखो किस तरह मैंने तुम्हारी लाज रखी, रक्षा की। तो हम सबके साथ भी ऐसा होता है, हमें देहदारी या कोई ऐसी भी चीजें याद आती हैं जो हमें उस विकट परिस्थिति से बाहर निकाल सकती हैं, लेकिन बाद में जब बाबा याद आता है तो बाबा बंधा हुआ है। इसीलिए अब पहले हम याद ही दूसरों को क्यों करें, जब भी कोई विकट परिस्थिति हो, बाबा मेरे, बाबा आओ, मुझे इस परिस्थिति से निकालो, मेरे साथी आओ। बाबा ने ये शब्द दिए हुए हैं, और हमने तो दसियों बार इसे, पचासों बार टेस्ट किया है, कभी भी बाबा ने निरुत्साहित नहीं किया। हर परिस्थिति में बाबा आया, आया माने बाबा का ढंग निराला है। किसी व्यक्ति को टच कर देगा जो कम्पिटेंट होगा, वो आके आपकी मदद के निमित्त बन जाएगा, कोई भी कारण निमित्त बन जाएगा जो आपको उस परिस्थिति से निकाल लेगा। लेकिन टच तो बाबा करेगा उस व्यक्ति को, और आप तुरंत ही, आपके बुद्धि में टच होगा एकदम, मैं फलाने व्यक्ति को फोन करूं, उसे याद करूं, उसे जैसे करेंगे तुरंत ही वो आपको उस परिस्थिति से निकाल लेगा। दसियों बार का ये वेल टेस्टेड एक मेथड है। तो इसीलिए परिवर्तन अगर हम चाहते हैं, स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय चाहते हैं, जो जैसे बाबा भी करता था, कई बार बाबा ने किया, हम लोग देखते थे, तो ऐसे ही हमें भी ये परिस्थिति आनी चाहिए। और लौकिक दुनिया में भी हम पढ़ते हैं, मानो सूरदास का उदाहरण पढ़ते हैं, सूरदास ने जब देखा कि उसका मन बड़ा चंचल है और आंखें जो है उसके मतलब सिविल नहीं है, क्रिमिनल है जैसे, तो उसने तो अपनी आंखें फोड़ ली। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, उसने जितनी भी रचनाएं की हैं उन सब अंदर मेरा मन पापी है, दोषी है, विकारी है, यानी कि आंख फोड़ने के बाद भी वो मन को परिवर्तित नहीं कर पाया। यही उसने बार बार लिखा, क्यों, क्योंकि आंखें तो ये इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन आंखें फोड़ ली लेकिन मन के अंदर जब तक अशुद्ध विचार आते रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते रहेंगे, तो ये तो और ही आपका मन कलुषित कर देंगे। तुलसीदास का भी बस जब उसमें परिवर्तन का थोड़ा उसे दुत्कारा गया, हाँ, पत्नी गई थी मायके और वो सांप को रस्सी समझ के ऊपर गया, चढ़ गया, तो देखा, तो जब उसे दुत्कारा कि अरे तुम्हारी इतनी प्रीत अगर प्रभु से होती तो तुम्हारा क्या, ये बात उसके परिवर्तन का आधार बन गई। और उसके बाद उसने तो कितनी रचनाएं की ऐसी ऐसी जो अमर हो गई। तो बात यह है कि परिवर्तन की घड़ी हमें लानी है, अपने आप आएगी भी तो हम पहचान नहीं सके, तो वो तो परिवर्तन की घड़ी आई और चली भी गई, हम पहचान नहीं सके, उसको यूटिलाइज नहीं कर सके, तो फायदा क्या हुआ। हमारे नेत्र भी हम उत्सुक रहे कि हाँ ये कमी है और इस कमी को निकालना है, तो ये परिवर्तन का एक आधार हो जाती है। कभी भरत हरि भी होके गए हैं, बहुत बड़े राजा थे, लेकिन जब वैराग हुआ तो उन्होंने राजबाग छोड़ा और चले गए जंगल की तरफ, बस जा रहे थे, उन्होंने एक सड़क पे कोई चमकती हुई चीज देखी, तो आदमी के संस्कार तो एकदम इतना निकल नहीं चाहते, उन्होंने झुका, उन्हें लगा कोई हीरा है, कोई सोने की चीज है, गए तो वो वास्तव में पान की पीक थी, पान खा के कोई वो थूक देता है तो उसमें वो चमक रही थी चांदनी रात में, तो उसको उन्होंने जैसे उठाने की कोशिश करी तब उन्हें पता चला। तो ये उनके पहला परिवर्तन तो मोटे तौर पर तो उन्होंने करा कि राजाई से किनारा किया, लेकिन ये अंदरूनी परिवर्तन था मन का कि देखा अभी तक भी मैं राजाई से किनारा करा आया, लेकिन यहां मेरा मन अभी तक भी उसी राजाई में फंसा है, हीरे मोती उन सब में, तो बस उनको बहुत एकदम वैराग हुआ और वो बहुत प्रसिद्ध आगे उसके मतलब कवि भी बन गए और उन्होंने बहुत लिखा। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कि हम भोगों को नहीं भोगते, लेकिन धीरे 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 भोग हमें भोगते चले जाते हैं। शुरू में आदमी सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा आदि आदि भोगों को भोगेगा, उसे लगेगा कि कोई बात नहीं, लेकिन धीरे 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 वो उनका गुलाम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, हम बूढ़े होते चले जाते हैं, लेकिन तृष्णाएं, इच्छाएं हमारी और बलवती होती चली जाती है, जवान होती चली जाती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम परमानेंट परिवर्तन अगर चाहते हैं तो अपने मन को परिवर्तन करें। बाहर से तो हमने काफी कर लिया, इसलिए फिर इसके परिवर्तन के लिए नेक्स्ट एक बहुत जरूरी शक्ति है, वो है मनन शक्ति। मन के अंदर मनन, मुरली तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन अगर मुरली का हमने मनन नहीं किया तो वो मुरली की शक्ति जो है हम उसे अपना नहीं बना पाएंगे, वो दूसरे की रहेगी। जैसे बैंक में कैशियर होता है, रोज लाखों रुपए गिनेगा, वो उसके अपने नहीं है, वो तो उसकी ड्यूटी है, लेकिन जिस दिन उसे तनख्वाह मिलेगी, कुछ हजारी मिले, उसे पाके उसे खुशी होती है कि ये मेरे हैं, मेरा इस पर अधिकार है। ऐसी मनन शक्ति करके अगर हमने कुछ मनन चिंतन आदि किया तो वो शक्ति हमारी बन जाती है। तो जैसे शरीर के लिए पाचन शक्ति की आवश्यकता है, बहुत आपने ताकत की चीजें भी खा ली लेकिन पाचन शक्ति अगर कमजोर है, शरीर को लगेगी नहीं तो कमजोरी रहेंगी। लेकिन अगर पाचन शक्ति स्ट्रांग है तो आपको शरीर को लगेगी। इसी तरह मनन शक्ति, मुरली सुनना ही सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए हम लोग दादियों को देखते थे, दीदियों को, वरिष्ठों को, जब तक एक बार मुरली सुनना ही सफिशिएंट नहीं है, जब तक उसे हम दो तीन बार पढ़े सुने नहीं, उस पर मनन चिंतन, कोई भी एक पॉइंट ले ले, चाहे धारणा की पॉइंट आती है, वरदान आते हैं आदि स्लोगन आता है, तो उसके ऊपर मनन चिंतन करें। और मनन चिंतन की एक विधि सहज ये भी है कि घर में चित्र तो होते हैं ना, तो कभी हम कल्प वृक्ष के चित्र के सामने बैठ जाएं और समझे भाई मैं तो कल्प वृक्ष का ये मुख्य तना हूँ, ये बीज रूप बाबा है और बाबा बीज से जैसे तना निकलता है, मैं पूरी सृष्टि की आधार मूर्त आत्मा हूँ, मैं ये शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो मनन शक्ति जितनी हमारी होती रहेगी स्ट्रांग, वो मनन शक्ति हमें और बहुत आगे तक ले जाएगी। तो इसीलिए मनन शक्ति साथ में हमारी होनी चाहिए। ये जरूर हम प्रतिदिन मुरली सुनने के बाद थोड़ा समय एकांत में अवश्य गुजारे। कहा जाता है कि एकांत में बुद्धि का विकास होता है और संगठन में चरित्र का विकास होता है। जहां संगठन होगा वहां कोई व्यक्ति ऐसी वैसी कमजोरी की बात नहीं करेगा, लेकिन एकांत में होगा तो बुद्धि का मनन चिंतन उसका जो चलता रहेगा, बुद्धि शक्तिशाली होती है एकांत में और चरित्र शक्तिशाली होता है संगठन में। इस कारण से ये हमें अपने को देखते चलना है, मनन शक्ति। और मनन शक्ति और भी कैसे आगे स्ट्रांग होगी कि जितना हमारे अंदर एकाग्रता आती जाएगी, एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर। देखो वही शक्ति वही सूर्य है, लेकिन जब उसकी किरणों को एकाग्र कर लेते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है बहिर्गोल दक्का, वो कॉन्वेक्स लेंस को अगर रख दो तो सारी किरणें एकाग्र हो जाती हैं और नीचे जो होता है वो जल जाता है, इतनी गर्मी है। वही किरणें हैं, अगर वो नहीं है तो उसको हम एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही एकाग्रता की शक्ति जीवन में बहुत आवश्यक है। जितना जितना एकाग्र होते जाएंगे तो ये महसूसता की शक्ति से शुरू हुआ है, महसूसता की शक्ति से परिवर्तन होगा, परिवर्तन की शक्ति के साथ साथ उसको अगर हम स्ट्रांग करना चाहते हैं तो मनन चिंतन, और मनन चिंतन को और अगर हम चाहते हैं शक्तिशाली उससे प्राप्ति हो तो एकाग्रता की शक्ति। तो हम सब में हैं ये शक्तियां, लेकिन होता क्या है कि वो शक्ति हम मुरली के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, धारणा के द्वारा इकट्ठी भी करते हैं लेकिन वो लीकेज भी हो जाती है। इकट्ठी करी पोटरी के अंदर मानो कोई चीज बांधी, लेकिन उसमें छेद होगा, चीज निकलती भी जाएगी, ऊपर से जितना भी डालते जाओ वो लीक हो जाएगी। ये क्योंकि एकाग्रता की शक्ति ही के द्वारा ही व्यक्ति मनसा सेवा कर सकता है। जो बाबा कहता है पूरी दुनिया को सकाश दो, क्या आपको आवाज सुनाई नहीं देती हमारे अपने भक्तों की कि ये भक्त लोग पुकार रहे हैं, हमारे इष्ट देवता आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, शक्ति दो, स्नेह दो, प्रेम दो, और आपको पुकार रहे हैं लेकिन आपको क्या सुनाई नहीं देता? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ही, मन के अंदर ही अगर हलचल है कुछ तो बाहर की ये बात हमें सुनाई बाहर से नहीं देगी। तो बाहर जितना भी हलचल हो लेकिन अंदर हमारा मन अचल होना चाहिए, एकाग्र। एक व्यक्ति जो है ना आया एक राजा के पास, छोटा सा दीक्षा पात्र था उसके पास, राजा के पास आके कहता है, राजन मुझे कुछ दीक्षा चाहिए। हाँ आओ। राजन ने अपने कोष से भंडारे से कुछ हीरे मोती सोना चांदी मंगाया, उसके दीक्षा पात्र में डाल दिया, लेकिन वो तो सफिशिएंट नहीं था। फिर और मंगाया और मंगाया, मंगाता चला गया, लेकिन देखने में भिक्षा पात्र इतना सा था, लेकिन उसके अंदर सब समाता चला जा रहा था। बहुत उसका भंडारा पूरा, राजा का राजकोष खाली भी हो गया, लेकिन वो नहीं भरा। तो राजा ने कहा जरूर इसमें कुछ ना कुछ रहस्य है। तो वो उस व्यक्ति को हाथ जोड़ के नम्र भाव से बोला, महाराज जरूर इसके अंदर कोई राज है, मैंने इतना सारा राजकोष मंगवाया वो सब इसके अंदर समा गया और अभी तक यह आधा ही भरा हुआ है। तो उसने कहा कि राज ये जो भिक्षा पाता ये बना है मनुष्य की खोपड़ी का, सिर का, और उसके अंदर व्यक्ति का मन होता है, तो इसीलिए ये भिक्षा पात्र कभी बनेगा नहीं, क्योंकि मन जो है कभी भी तृप्त नहीं, एक इच्छा पूर्ति होती है दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, दूसरी होती है तीसरी हो जाती है, इस तरह इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। तो वो ये बता रहा था कि भाई राजन इस वजह से ये कभी नहीं भरता। बस वही बात है, हमारे अंदर जितनी इच्छाएं होंगी, तो बाबा ने क्या कहा इच्छा के लिए, इच्छा जो है अच्छा नहीं बनने देती, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या जो बाबा ने कहा है वो इच्छा। और बाबा की भी अंतिम स्थिति ऐसी थी। हाँ जब हम 17-18 जनवरी को बाबा को मिले ना, पहले मिलते थे तो बाबा बात करते थे, जैसे हमने बताया हम जब 17 और 18 जनवरी को करीब 5-6 बार बाबा से मिले होंगे, क्योंकि यहाँ पर और पार्टियां तो थी मधुबन में, तब अमी लोग मैं हम और हमारे लौकिक पिताजी थे, तो हम लोग गए। ये भी ड्रामा अनुसार ऐसा पार्ट बन गया कि हम आसाम में पोस्टेड थे, अपना इंजीनियरिंग पास करने के बाद आसाम में पोस्टेड थे ONGC में, वहां से बाबा ने जैसे युक्ति से बुला ली और हम बाबा के पास पहुंच गए। तो लेकिन एक विचित्र बात ये देखी कि बस बाबा के पास जाते थे, अब बाबा कोई हमेशा की तरह ये कहेंगे ये पोता मेल दिखाएंगे, ये बाबा को कहेंगे ये सेवा हो रही है ये पुरुषार्थ है, बाबा बस थोड़ा दृष्टि दी ऐसे देखता था, और बाबा कहता था कि बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाए। यानी हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मन में क्या चल रहा है संकल्प, वो संकल्प तुरंत बाबा कैच करके और उसका समाधान दे देते थे। ये है कर्मातीत अवस्था का लक्षण, इच्छा मात्रम अविद्या का लक्षण। जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी वो दूसरे की इच्छा को तुरंत ही पकड़ सकता है, और केवल पकड़ ही नहीं सकता, दूसरे की इच्छा को जान करके उसकी इच्छा को पूरा भी कर सकता है। इसीलिए कहते हैं भक्तों के साथ, भक्त जब भगवान के सामने जाता है, भगवान पूछते हैं बोलो वरदान मांगो क्या चाहते हो, तो वो कुछ जो भी उसके मन में होता है तो बस भगवान का एक ही शब्द रहता है, क्या तथास्तु, और भगवान अंतर ध्यान हो गए और भक्त की इच्छा पूरी होगी। तो ये जो बात हमने अंतिम समय में बाबा के से महसूस करी, 5-6 बार जब भी मिले, यहां तक कि 18 जनवरी की रात्रि क्लास में बाबा मुरली चला रहे थे और हम सामने बैठे हुए थे, और हमने हमारे मन में संकल्प आया, मन में ही संकल्प आया बाबा कुछ बोले हमारे लिए। अभी भी इच्छा होती है ना, जो पुराने हैं जब अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन में हैं आते थे, तो भाई चलो स्टेज पे जाने का मौका मिले, चलो बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, बाबा की दृष्टि मिल जाए, होता है ना मन में। तो ऐसे हमारे मन में संकल्प उठा, ये 18 जनवरी की रात्रि क्लास, बाबा के शरीर छोड़ने से एक घंटा पहले की स्थिति लगभग। तो मन में संकल्प आया और जब जैसे ही संकल्प आया तुरंत ही बाबा तो मुरली चला रहे थे, रात्रि क्लास मुरली चलाते चलाते बाबा ने सडनली नाम लिया हमारा और नाम लेके महावाक्य कुछ उच्चार दिए। देखो ये है कर्मातीत अवस्था की आत्मा का लक्षण। भक्त के मन में इच्छा हो, कोई बात हो और भगवान को कहने की जरूरत, अगर कहकर हुआ तो भगवान में और मनुष्य में अंतर ही क्या हुआ, लेकिन भगवान तक वो बात पहुंचे। और भक्ति मार्ग में तो हम भक्त आत्माएं हैं और वो तो कृष्ण की आत्माएं हैं, तो महान है। तो इस रीति से ये बात जो देखी तो ये है जिसकी जितनी जितनी एकाग्रता होगी, और एकाग्रता होती जाएगी तो उससे क्या होगा, उसका एक और गुण है शक्ति, सत्यता की शक्ति, उसमें उतनी सत्यता आती जाएगी। भगवान को भी बोलते हैं ना, चलिए योग करते हैं थोड़ा सा। तो बात चल रही थी, बस अंत की तरफ हम प्रोसीड करते जा रहे हैं कि जब कर्मातीत अवस्था के करीब आत्मा होती है तो उसमें उतनी ही फिर सत्यता की शक्ति आती जाती है। कहा जाता है ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो जितना हम सच्चे होंगे उतना ईश्वर के हम नजदीक होंगे। सच्चे दिल पर साहब राजी, सत्यता की शक्ति है। और पहचान क्या है, सत्य तो बिठो नच, सच तो बिठो नच। जो सच्चा होगा वो खुशी में नाचता रहेगा, बस खुशी रहेगी। कोई परिस्थिति आए परिस्थिति उसकी खुशी को छीन नहीं सकती, बल्कि वो स्वस्थिति को इतना ऊंचा बना लेगा, परिस्थिति के ऊपर वो हावी हो जाएगी और वो खुशी में नाचता रहेगा। और इसीलिए सच्चे उस पर बताया गया है कि जितना जितना व्यक्ति सत्य होता है, सच्चा होता है, तो क्या होता है, सच्चे व्यक्ति के वाइब्रेशन भी इतने पॉजिटिव होते हैं कि जंगल में भी अगर होगा वो पॉजिटिव वाइब्रेशन से दूर बैठे पास में आते हुए हिंसक प्राणी को भी अहिंसक बना देगा। जंगल में हमारे बहुत ऐसे होते हैं हिंसक पशु, और द्वापर युग से हमने बहुत भक्तों की बात सुनी हुई है, सन्यासियों की बात, आते थे पास में आके सब हिंसक पशु भी अहिंसक बन जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा इतना शक्तिशाली होता है, और ये है सत्यता की बात। तो हमें भी वो सत्यता की शक्ति धारण करते करते उधर की तरफ बढ़ना है, और जो जितना सत्य होगा, ये हमने ब्रह्मा बाबा को मामा को भी देखा, सत्यता होती है तो उनमें एक बहुत महान शक्ति आ जाती है, वो है क्षमा की शक्ति। हर व्यक्ति को जिसने आपके साथ जितना बुरा भी किया है, कुछ भी किया है, दिल में नहीं रखेंगे वो, बस अगले ही क्षण उसकी गलत बात को भूल जाएंगे और उसको क्षमा कर देंगे। क्षमा के लिए कहा है कि क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो महावीर होगा, आत्मा वरदानी मुहूर्त होगी, वो ही क्षमा कर पाएगी। तो इसीलिए ये जितना क्षमा करते चलते हैं, देखते वो ही साक्षी दृष्टा हो सकता है, देख रहा है गलत बात भी, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो नहीं जा रही है जिससे कि उसका नेगेटिव रिएक्शन हो, और वो जैसे उस ड्रामा के पट्टे पर खड़े होकर के उन व्यक्तियों को सद्बुद्धि का दान देने का पुरुषार्थ कर रहा है। तो ये जो बातें हैं, परिवर्तन जितना जितना ये होता चला जाता है, इस परिवर्तन के आधार पर ही आत्मा जो है, फिर अंत में जो दो शक्ति, एक निर्भयता की शक्ति, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अंत में जब चारों तरफ विनाश ज्वाला और ये सब जो जल रही होगी, तो उस वक्त व्यक्ति को निर्भय होने की बहुत आवश्यकता। बाबा ने कहा है ना, जो कच्चे दिल वाले होंगे वो तो एक बम गिरा और ठाक से ही हार्ट फेल हो जाएगा, मर जाएंगे, तो वो तो अंत मते सो गति एकदम हुई नहीं। अगर इस तरीके से हमारी मृत्यु भी ऐसी होनी चाहिए जो इच्छा मृत्यु हो, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, जैसे भीष्म पितामह ने इच्छा से शरीर छोड़ा, तो हमारा भी वो ही होना चाहिए। और वो कब होगा, हमारी इच्छा जब इतनी दूसरी और कोई इच्छाएं नहीं होंगी, तो हमारी ये इच्छा भी हमारे कंट्रोल में होगी, और हम इच्छा से, जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, ब्रह्मा बाबा ने भी कैसे इच्छा से 17-18 जनवरी को कई बार मिले, 18 जनवरी को बाबा ने बस जो जो पेंडिंग काम थे, रहे हुए काम थे, वो पूरे किए, सारे पत्रों के उत्तर दिए, और रोज रात को क्लास 9 बजे होती है मधुबन में, उस दिन बाबा ने बोला कि आज बाबा 7 बजे ही क्लास कराएगा, और सबको इंस्ट्रक्शन दे दी कि सब भोजन करके आए। सब भोजन करके 7:30 तक आ गए, और बाबा भी आए, और बाबा ने वो क्लास कराई, और बस अंतिम क्लास भी ऐसी थी बाबा की, वो अंतिम क्लास में न बाबा को एक बार भी खांसी आई, न एक बार भी गला साफ करने की जरूरत पड़ी। वो इस बात को दर्शाता है कि अंतिम जो स्थिति हमारी भी होगी ना, वो अंतिम स्थिति कर्म भोगों के ऊपर, शरीर के जितने भी कर्म भोग हैं उनके ऊपर हमारा योग बल जो है वो संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा, और बाबा का भी संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त हुई, एक बार भी तकलीफ नहीं हुई और बाबा बस ये मुरली चला के और अंत में बाहर निकले और बच्चों को अच्छा वही कल भी मुरली में बाबा ने कहा ना, निराकारी निरंकारी और निर्विकारी, इन शब्दों का वरदान देते हुए बाबा ने अंत में कहा अच्छा बाबा छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये बाबा ने पहले कभी नहीं कहा, उसी दिन ही पहली बार अच्छा बाबा विदा लेता है, छुट्टी लेता है। ये क्या के बाबा गए और बाबा के हाथ में दादी प्रकाशमणि जी का हाथ और नैनों से नैन मुलाकात करते हुए अपने सब विल्स दान करते हुए जैसे बाबा ने छुट्टी ली। कोई भी ऐसा अशक्ति नहीं हुई। लेकिन और बाबा गए, बाबा को बच्चों ने पूछा बाद में कि बाबा आपको अंत समय कैसा महसूस हो रहा था, तो बाबा ने बताया बच्चे बस अंत समय ये महसूस हो रहा था, कर्म भोग की और योग बल की युद्ध बहुत तेजी से चल रही थी और शरीर में जैसे बहुत दर्द हो रहा था, हार्ट में पेन हो रहा था, और लेकिन बाबा धीरे धीरे याद की यात्रा को स्ट्रांग करता गया, वो कर्म भोग धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला गया और अंत में योग बल ने कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और जैसे आत्मा मक्खन से बाल की तरह निकल के चली। तो हमें भी यही अभ्यास होना चाहिए अंत समय तक, क्योंकि लास्ट पेपर हमारा ये शरीर का ही है, आत्मा तो शरीर से ही जाएगी ना, तो इसीलिए इस शरीर से निकलने के लिए आत्मा वो करती रहे। तो बस अभी अंत में हम लोग 2 मिनट याद करके बाबा को और यही अपना संकल्प करेंगे कि किसी तरह हम आत्माएं संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके ही शरीर छोड़े और हमारा यही वो रहे संकल्प कि बाबा मुझे भी आपकी तरह इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो, इच्छा से शरीर छोड़े। ओम शांति, ओम शांति।
It's a